एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान। आज हम गोता लगा रहे हैं एक बेहद अहम किताब में।
नमस्कार, और आज हम बात करेंगे अल्बर्ट कामू की किताब द रेबल पर।
हाँ, द रेबल, जिसे हम हिंदी में विद्रोही कह सकते हैं। ये किताब सिर्फ फलसफा नहीं है बल्कि जीने के तरीके पर एक बहुत जरूरी बातचीत है ना?
बिल्कुल, और देखिए आज के जमाने में तो ये शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हम रोजाना देखते हैं अखबारों में, सोशल मीडिया पर कितना अन्याय है, टकराव है, अलग अलग विचारधाराओं में कितनी कड़वाहट है।
सही बात है।
तो सवाल यही उठता है कि भाई नाइंसाफी के खिलाफ आवाज कैसे उठाएं, और वो भी ऐसे कि हम खुद नफरत या हिंसा का शिकार ना बन जाएं। कामू की ये किताब इसी मुश्किल सवाल से जूझती है कि विद्रोह और विनाश के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है।
ये तो वाकई बड़ा सवाल है। तो चलिए पहले लेखक को थोड़ा जान लें, अल्बर्ट कामू।
हाँ, अल्बर्ट कामू 1913-1960 फ्रांसीसी अल्जीरियाई लेखक थे, दार्शनिक, पत्रकार भी।
अच्छा।
और 1957 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था।
नोबेल पुरस्कार, तो क्या बात उन्हें इस विषय पे, मतलब विद्रोह पर लिखने के लिए खास बनाती है?
देखिए कई बातें हैं। एक तो ये कि उन्होंने खुद अल्जीरिया में अपने बचपन में गरीबी देखी थी, उपनिवेशवाद देखा था, तो अन्याय का जो अनुभव था ना, वो किताबी नहीं था, असली था।
अच्छा, मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था।
बिल्कुल। और दूसरा, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम वो नाजी कब्जे के खिलाफ जो फ्रांसीसी प्रतिरोध आंदोलन था उसमें बहुत एक्टिव थे। एक सीक्रेट अखबार निकालते थे, कॉम्बैट,
अरे वाह।
तो उन्होंने तानाशाही और जो हिंसा होती है उसके नतीजों को बहुत नजदीक से देखा था।
मतलब वो सिर्फ एक एकेडमिक दार्शनिक नहीं थे, उनके विचार उनके तजुर्बों से निकले थे।
एकदम। और उनकी खासियत यही थी कि वो हमेशा बड़े बड़े फलसफों को आम इंसान की जिंदगी, उसकी मुश्किलों से जोड़ने की कोशिश करते थे। इसीलिए लोग उन्हें अक्सर अस्तित्ववादी या एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते हैं, हालांकि वो खुद ये लेबल कुछ खास पसंद नहीं करते थे। उनका जोर इस बात पर था कि ये दुनिया चाहे कितनी बेतुकी लगे, अर्थहीन लगे, फिर भी इसमें नैतिक रूप से कैसे जिया जाए।
सही।
और ये किताब द रेबल उनकी पिछली किताब द मिथ ऑफ सिसिफस से एक कदम आगे जाती है, जहां सिसिफस में वो अकेले इंसान की बात करते हैं जो दुनिया की बेतुकीपन का सामना कर रहा है।
हाँ, वो पत्थर वाला मिथक।
वही तो, विद्रोही में कामू पूछते हैं कि हम सब मिलकर अन्याय का सामना कैसे करें। मतलब मैं से हम तक का सफर है ये।
दिलचस्प, मैं से हम तक। तो अब आते हैं किताब पर। इसका सार क्या है, मतलब मोटी मोटी बात क्या है इस किताब की?
ये किताब असल में इस सवाल की गहराई में जाती है कि जब दुनिया में कोई ऊपर वाला नहीं है, कोई बने बनाए सही गलत के पैमाने नहीं है, तो इंसान अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों उठाता है और कैसे उठाता है। ये उस विद्रोह की कहानी है जो इंसान के अंदर से फूटता है।
और कामू का सबसे बड़ा आइडिया क्या है इसमें, जो सबसे हटके हो?
सबसे जरूरी बात जो कामू कहते हैं और जिस पर पूरी किताब टिकी है, वो है विद्रोह, रिबेलियन और क्रांति, रेवोल्यूशन के बीच का फर्क।
अच्छा, विद्रोह और क्रांति, ये अलग कैसे हैं?
देखिए, विद्रोह तब शुरू होता है जब कोई इंसान जुल्म सहते सहते एक पॉइंट पर कहता है, बस अब और नहीं। ये जो नहीं है ना, ये सिर्फ इनकार नहीं है, इसमें एक हाँ भी छिपी होती है।
हाँ, किस चीज के लिए?
हाँ, उन उसूलों के लिए, उस इंसानी गरिमा के लिए, उस सीमा के लिए जिसका उल्लंघन हुआ है। मतलब ये विद्रोह कहता है कि कुछ चीजें हैं जो सही हैं, जिनकी इज्जत होनी चाहिए।
अच्छा, तो विद्रोह सिर्फ तोड़फोड़ या गुस्सा नहीं है, बल्कि कुछ बनाने की, कुछ बचाने की कोशिश भी है।
बिल्कुल, विद्रोह एक हद तय करता है, एक सीमा खींचता है, लेकिन क्रांति कामों के मुताबिक अक्सर इस विद्रोह की जो असल भावना है उसे भूल जाती है।
कैसे?
क्रांति किसी आने वाले कल के हसीन सपने, किसी काल्पनिक स्वर्ग के लिए आज के जीते जागते इंसानों की बलि चढ़ाने लगती है। वो पूरी सत्ता चाहती है, टोटल कंट्रोल, और अंत में अक्सर वो तानाशाही और आतंक में बदल जाती है। यही कामू हमें तार्किक अपराध यानी लॉजिकल क्राइम से सावधान करते हैं। मतलब वो जुल्म जिसे किसी बड़ी विचारधारा या भविष्य के नाम पर सही ठहराया जाता है।
ये तो बहुत बहुत अहम फर्क बताया आपने। तो कामू का झुकाव किस तरफ है, वो किसके साथ हैं?
कामू सच्चे ईमानदार विद्रोह के साप कड़े हैं, वो विद्रोह जो इंसानी एकजुटता और मूल्यों की बात करता है, जो ये दावा नहीं करता कि उसे सब पता है या वो दुनिया को जन्नत बना देगा। ये किताब असल में पश्चिमी दुनिया में पिछले 200 सालों के विद्रोह के इतिहास को देखती है, साहित्य में, दर्शन में और असल राजनीतिक आंदोलनों में भी।
चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आपने कहा विद्रोह नहीं से शुरू होता है, इसे थोड़ा और समझाएंगे।
हाँ, सोचिए जैसे कोई गुलाम है जो सालों से, पीढ़ियों से हुक्म मानता आया है, अचानक एक दिन वो अपने मालिक को पलट कर कहता है नहीं। उस एक नहीं में सिर्फ उस एक हुक्म का इनकार नहीं है, उसमें ये ऐलान भी है कि मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी एक सीमा है, मेरा भी सम्मान है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा होता, वो हर उस इंसान के लिए बोल रहा होता है जिसके साथ ऐसा सुलूक हो रहा है।
और यहीं से वो मशहूर लाइन आती है, मैं विद्रोह करता हूँ इसलिए हम हैं।
बिल्कुल, यही वो पॉइंट है। जब कोई एक व्यक्ति नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होता है तो वो ये दिखाता है कि कोई चीज है जो हम सबके लिए जरूरी है, कोई साझा मूल्य है, कोई साझा गरिमा है। मेरा विद्रोह मुझे अकेलेपन से निकालकर दूसरों से जोड़ता है, हम एक साझा इंसानियत का हिस्सा बनते हैं, मैं से हम बन जाते हैं।
ये तो कमाल की बात है। इसके बाद कामो एक और तरह के विद्रोह की बात करते हैं, तत्वमीमांसीय विद्रोह, मेटाफिजिकल रिबेलियन।
ये क्या चीज है, सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है।
हाँ, शब्द थोड़ा अकादमिक है पर मतलब उतना मुश्किल नहीं है। देखिए, ये सिर्फ किसी राजा या सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं है, ये पूरी इंसानी हालत के खिलाफ विद्रोह है। हमारी मौत, हमारे दुख, इस ब्रह्मांड की जो खामोशी है उसके खिलाफ।
अच्छा, मतलब जिंदगी की बेतुकीपन के खिलाफ। हाँ, कुछ वैसा ही। कामू इसके उदाहरण के तौर पर साहित्य और दर्शन के कुछ किरदारों को देखते हैं, जैसे मार्क्विस डी सादे, जो आज़ादी के नाम पर सब कुछ तबाह कर देना चाहते हैं। ये एक तरह की चेतावनी है कि बिना सीमा की आज़ादी कितनी खतरनाक हो सकती है। या फिर दोस्तोव्स्की के इवान कारामाज़ोव, वो मासूम बच्चों के दुख से इतने परेशान हैं कि वो दुनिया बनाने वाले ईश्वर के ही खिलाफ हो जाते हैं और इस सोच तक पहुंच जाते हैं कि अगर ईश्वर नहीं है तो सब कुछ जायज़ है, मतलब नैतिकता का कोई आधार ही नहीं बचा।
बाप रे, तो ये वो विद्रोह है जो रास्ते से भटक सकता है, बहुत दूर जा सकता है।
हाँ बिल्कुल, ये वो विद्रोह है जो नकारते नकारते सब कुछ नकार देता है, यहाँ तक कि इंसानियत को भी। फिर कामू देखते हैं कि कैसे ये विचार, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज असल इतिहास में उतरे। इसे वो ऐतिहासिक विद्रोह कहते हैं।
जैसे कि?
जैसे फ्रांसीसी क्रांति। राजा लुई सोलवे को मारना सिर्फ एक राजा को मारना नहीं था, वो ईश्वर के दिए अधिकार के विचार को, डिवाइन राइट को मारना था।
सही।
लेकिन फिर क्या हुआ, क्रांतिकारियों ने ईश्वर की जगह तर्क, रीजन या सद्गुण, वर्चू जैसे नए भगवान बना लिए और फिर उनके नाम पर भयानक हिंसा की, जिसे आतंक का राज या द टेरर कहा गया। यहीं से वो तार्किक अपराध शुरू होता है, जहां एक ऊंचे लक्ष्य के लिए जुल्म को सही मान लिया जाता है।
और ये सिलसिला आगे भी चला, ये पैटर्न दोहराया गया।
हाँ, कामू हेगल और मार्क्स जैसे विचारकों की भी आलोचना करते हैं। उनका मानना था कि इन लोगों ने इतिहास को ही एक तरह का भगवान बना दिया, जैसे कि इतिहास अपने आप एक तयशुदा बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। और इसका नतीजा ये हुआ कि भविष्य के उस कथित स्वर्ग के लिए आज के इंसानों को कुर्बान करना जायज लगने लगा। इसने अनजाने में तानाशाही के लिए जमीन तैयार कर दी।
और यहीं से फिर राज्य आतंकवाद का जन्म होता है।
कामू फिर रूसी क्रांति और खासकर स्टालिन के दौर का विश्लेषण करते हैं, कैसे बराबरी और न्याय के नाम पर शुरू हुआ एक आंदोलन एक भयानक तानाशाही में बदल गया, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली।
वही तर्क?
हाँ, वही तर्क। भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान। क्रांति ने अपने ही शुरुआती विद्रोहों को धोखा दे दिया। इसी तरह वो फांसीवाद और नाजीवाद को देखते हैं, वो तर्क को पूरी तरह नकार कर नस्ल या राष्ट्र को भगवान बना लेते हैं और फिर भयानक हिंसा करते हैं। कामू के लिए ये सब विद्रोह के भटके हुए, बिगड़े हुए रूप है।
ये तो इतिहास की काफी निराशाजनक तस्वीर लगती है
जी।
क्या कामू कोई उम्मीद की किरण भी दिखाते हैं, कोई पॉजिटिव रास्ता?
हाँ, दिखाते हैं। इतिहास के इन खतरनाक मोड़ों के विश्लेषण के बाद कामू एक ऐसी जगह की तरफ इशारा करते हैं जहाँ विद्रोह ज्यादा उम्मीद भरा और रचनात्मक हो सकता है, और वो जगह है कला, आर्ट।
कला, आर्ट?
वो कैसे?
विद्रोह और कला का क्या कनेक्शन है?
सोचिए, एक पेंटर या लेखक क्या करता है, वो असल दुनिया को देखता है, उसकी कमियों को, उसके अधूरेपन को, वो उसे एक तरह से नकारता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह नष्ट नहीं करता,
हाँ।
बल्कि वो एक नई, बेहतर, ज्यादा सुसंगत दुनिया बनाता है अपनी कला के जरिए। वो दुनिया की बेतरतीबी पर एक रूप, एक स्टाइल थोपता है।
बिल्कुल।
वो दुनिया की खामियों को नहीं कहता है, लेकिन साथ ही खूबसूरती और संतुलन को हाँ भी कहता है।
अच्छा।
कला सीमाएं तय करती है, वो तोड़ती नहीं, रचती है। कामों के लिए कला सच्चे विद्रोह का एक मॉडल है कि कैसे नकार और स्वीकार को, नहीं और हाँ को संतुलित किया जाए।
ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, कला एक मॉडल के तौर पर। तो इस सारे विश्लेषण के बाद कामू का अपना समाधान क्या है, वो क्या रास्ता सुझाते हैं?
वो इसे मध्य दोपहर का चिंतन, थॉट एट द मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन यानी दोपहर का वो वक्त जब सूरज ठीक सिर पर होता है, सब कुछ साफ साफ दिखता है।
बिल्कुल।
हाँ, ये संतुलन, स्पष्टता और सीमाओं का प्रतीक है, खासकर भूमध्य सागर के इलाके का जहाँ कामू पले बढ़े। यहाँ कामू बड़ी बड़ी विचारधाराओं, जिन्हें वो अक्सर जर्मन या रूसी सोच से जोड़ते हैं, उनके बजाय संतुलन, संयम और सीमाओं पर जोर देते हैं।
मतलब दुनिया बदलने के बड़े बड़े एब्सोल्यूट दावों से सावधान रहना चाहिए।
बिल्कुल। सच्चा विद्रोह कामू के लिए किसी खास अन्याय के खिलाफ होता है। वो पूरी दुनिया को एक झटके में जन्नत बनाने का दावा नहीं करता। वो भविष्य के अमूर्त सपनों के बजाय आज के इंसान, उसकी ठोस जिंदगी, उसकी खुशियों को महत्व देता है। वो एकजुटता, मैं विद्रोह करता हूँ इसलिए हम हैं, और प्रकृति, खूबसूरती जैसी ठोस चीजों को इतिहास की अंधी पूजा से ऊपर रखता है। ये जीने का एक तरीका है, सिर्फ राजनीति का सिद्धांत नहीं।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत के जो मुख्य संदेश हैं, जो टेकअवेज हैं, उन्हें समेटने की कोशिश करें, तो सबसे पहली और जरूरी बात क्या होगी आपके हिसाब से?
मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है विद्रोह और क्रांति के बीच का फर्क समझना। विद्रोह जरूरी है, वो हमें इंसान बनाता है, हमें हमारी सीमाएं सिखाता है, लेकिन जब विद्रोह सब कुछ बदल डालने वाली टोटल क्रांति का रूप ले लेता है, तो अक्सर वो ज्यादा बड़ी तबाही लाता है।
हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम इसे देख सकते हैं। जैसे किसी दफ्तर में गलत नियम का शांति से विरोध करना विद्रोह है, लेकिन बिना सोचे समझे पूरे सिस्टम को ही उखाड़ने की बात करना, वो खतरनाक हो सकता है।
बिल्कुल। और दूसरा बड़ा संदेश है वो लाइन, मैं विद्रोह करता हूँ इसलिए हम हैं। ये याद दिलाता है कि जब हम अन्याय के खिलाफ बोलते हैं, तो हम अकेले नहीं होते, हम एक साझा इंसानियत का हिस्सा हैं, और हमारी नैतिकता, हमारे मूल्य इसी साझा एहसास से पैदा होते हैं।
जैसे आजकल हम देखते हैं, किसी मुद्दे पर जब लोग एकजुट होते हैं, #MeToo या कोई और आंदोलन, तो वो एक दूसरे को ताकत देते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल। तीसरा, निरपेक्षता का खतरा। कामू हमें बार बार चेताते हैं कि जब हम किसी भी चीज को, चाहे वो तर्क हो, इतिहास हो, राष्ट्र हो या कोई विचारधारा, उसे भगवान का दर्जा दे देते हैं और उसके नाम पर जुल्म को सही ठहराने लगते हैं, तो हम बहुत खतरनाक रास्ते पर निकल जाते हैं। किसी भी तरह की कट्टरता जो दूसरों को दुश्मन की तरह देखे, वो विनाशकारी होती है।
और चौथा संदेश शायद सीमाओं और संयम का महत्व है।
हाँ, ये बहुत अहम है। कामू कहते हैं कि सच्ची आजादी और सच्चा न्याय संतुलन में ही मिलते हैं। असीमित आजादी क्या है? वो तो बस सबसे ताकतवर की मनमानी बन जाती है, और असीमित न्याय वो आतंक बन जाता है। हमें अपनी मांगों और दूसरों की जरूरतों के बीच, अपने आदर्शों और असलियत के बीच संतुलन साधना सीखना होगा।
इस किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो इन विचारों को बहुत अच्छे से पकड़ती हैं, क्यों?
हाँ, बिल्कुल। कुछ बहुत यादगार बातें हैं,
तो कुछ साझा करते हैं। पहली तो वही, मैं विद्रोह करता हूँ इसलिए हम हैं। ये हमें हमारी साझा इंसानियत और उस अवज्ञा से जन्मी एकजुटता की याद दिलाती है।
हाँ, और दूसरी, निरंकुश स्वतंत्रता सबसे ताकतवर का प्रभुत्व जमाने का अधिकार है।
ये एक सीधी चेतावनी है कि बिना नैतिक सीमा वाली आजादी कैसे जुल्म में बदल सकती है। लिमिट जरूरी है।
और एक और जो मुझे बहुत असरदार लगी, हर क्रांतिकारी अंत में अत्याचारी या विधर्मी बन जाता है।
ये क्रांतियों के उस दुखद चक्र की ओर इशारा करता है, जहां सत्ता में आने के बाद वो अक्सर अपने ही आदर्शों को भूल जाते हैं और किसी भी विरोध को कुचलने लगते हैं।
बहुत दुखद है, पर अक्सर सच होता है।
और एक आखिरी, वास्तविक उदारता भविष्य के प्रति वर्तमान को सब कुछ देने में है। इसका मतलब यह है कि असली उदारता ये नहीं कि हम भविष्य के किसी हसीन सपने के लिए आज के इंसानों को कुर्बान कर दें, बल्कि ये कि हम आज इसी पल में न्याय और करुणा के साथ जिएं। हमारा ध्यान यहां और अभी पर होना चाहिए। ये विचार तो बहुत गहरे हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? क्या ये सिर्फ दार्शनिकों के लिए हैं या हम सबके लिए हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल हम सबके लिए हैं। देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर भी हम रोज छोटे छोटे विद्रोह करते हैं। जब हम दफ्तर में किसी गलत काम को देखते हैं और चुप नहीं रहते, या किसी दोस्त को प्यार से समझाते हैं कि किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, तो हम एक तरह का विद्रोह ही तो कर रहे होते हैं।
सही कहा।
काबू हमें सिखाते हैं कि ये नहीं सम्मान के साथ, बिना नफरत के, रचनात्मक तरीके से कैसे कहें। साधन और साध्य दोनों सही होने चाहिए।
और समाज के स्तर पर?
सामाजिक या राजनीतिक आंदोलनों को देखते हुए हम कामों की नज़र से सोच सकते हैं। क्या ये आंदोलन किसी खास अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है और इंसानी गरिमा और सीमाओं का सम्मान कर रहा है, या फिर ये किसी निरपेक्ष विचारधारा के नाम पर नफरत फैला रहा है और अपने विरोधियों को अमानवीय बना रहा है? हमें सोच समझकर तय करना होगा कि हम किसका साथ दें।
मापे हुए सुधार अक्सर खतरनाक उथल पुथल से बेहतर होते हैं।
हाँ, और अपने आपसी रिश्तों में भी ये लागू होता है ना। सम्मान के साथ असहमति जताना, अपनी सीमाएं बताना बिना दूसरे पर हमला किए, ये भी तो एक तरह का संतुलित विद्रोह ही है।
बिल्कुल।
और शायद सबसे जरूरी है बौद्धिक विनम्रता रखना। सवाल पूछना, आलोचनात्मक होना जरूरी है, लेकिन ये भी मानना कि हमें सब कुछ नहीं पता, दूसरों की बात सुनने को तैयार रहना, संवाद को महत्व देना।
तो इस पूरी चर्चा से अगर एक चीज लेकर जानी हो तो आपके लिए वो क्या होगी?
हमें उन सभी विचारधाराओं से बेहद सावधान रहना होगा जो एक सुनहरे भविष्य का वादा करके आज के इंसानों की बलि मांगती हैं। असली रास्ता करुणा, एकजुटता और संयम का है, सीमाओं का सम्मान करने का है।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि कामों के मुताबिक नैतिकता कोई आसमान से टपकी हुई चीज नहीं है, कोई बनी बनाई लिस्ट नहीं है, बल्कि हम उसे अन्याय के खिलाफ मिलकर खड़े होने के अमल से, उस एक्शन से बनाते हैं। ये बहुत बहुत शक्तिशाली विचार है। और कला में उम्मीद ढूंढना, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में वर्तमान पल, रिश्तों और खूबसूरती पर ध्यान देने की बात, ये बहुत जरूरी लगती है।
बिल्कुल, वो भूमध्य सागरीय सोच जिसे वो कहते हैं।
हाँ, तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। अगर विद्रोही हमारे साझा मूल्यों को घड़ता है, उन्हें बनाता है, तो हम कैसे पक्का करें कि आज हम जिस तरह से विद्रोह कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, सड़कों पर हो, या अपनी रोज की जिंदगी के छोटे छोटे चुनाव हों, वो वाकई एकजुटता बढ़ा रहा है और इंसानी गरिमा को मजबूत कर रहा है। कहीं हम अनजाने में नफरत या बंटवारे को या उत्पीड़न के नए सूक्ष्म रूपों को तो हवा नहीं दे रहे? सोचने वाली बात है ना?
जरूर सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।